एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो पुणे के स्टूडियो से
आपका हार्दिक स्वागत है।
यह हमारी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सेवा है।
हमारे आज के कार्यक्रम में हम आपके लिए एक प्रेरणादायक संदेश और प्रशंसा के गीत ले आए हैं।
आपको आध्यात्मिक रूप से मजबूत करने के लिए आप परमेश्वर का वचन सुनेंगे।
आप एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो सुन रहे हैं आशा की वाणी।
अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं 1-800-833-2231 पर संपर्क करें या bible@awr.org पर ईमेल करें।
इस डाक पते पर हमें लिखने के लिए आपका स्वागत है। एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर, पोस्ट बॉक्स 1446, मार्केट यार्ड पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल कर सकते हैं hindirsamc@sudadventist.org। एक बार फिर ईमेल आईडी hindirsamc@sudadventist.org पर।
आप इस नंबर पर आपकी बाइबल अध्ययन में रुचि और प्रार्थना अनुरोध के साथ हमसे संपर्क कर सकते हैं। 9195-7285-9272।
आप हमारे सभी कार्यक्रमों को सुनने के लिए हमारी वेबसाइट awr.org पर भी लॉगिन कर सकते हैं। मैं दोहराता हूँ awr.org या awr360 मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं।
एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो AWR पुणे स्टूडियो से
हमारे साथ हैं श्रीमान रॉबिन्सन आर कुजूर परमेश्वर का वचन प्रस्तुत करने के लिए।
परमेश्वर का वचन सुनने से पहले आपके लिए एक मधुर गीत।
प्रभु येशु है धन्य महान, मेरा जीवन है तेरे साथ, सिजदा मैं करूं तेरी, जीवन में तू ही तू,
तू।
यीशु है महान, प्रभु है महान, यीशु है महान, प्रभु है महान। इस दुनिया में सबसे ऊंचा यीशु
समय है परमेश्वर का वचन सुनने का।
नमस्कार मेरे प्रिय श्रोताओं, मैं भाई रॉबिन्सन कुजूर परमेश्वर का सेवक परमेश्वर का वचन लेकर आपके पास आता हूँ। आइए हम परमेश्वर का वचन सुनने से पहले परमेश्वर पिता से प्रार्थना करें। हे हमारे महान दयालु सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम तेरे जन तेरे पास आते हैं, हम तेरे वचनों को सुनना चाहते हैं। पिता हमारे मनों को खोल दे और तेरा पवित्र आत्मा से भर दे। विशेषकर मेरे श्रोता गणों के संग हो, जब तेरे वचनों को सुनते हैं पिता, वे सुनकर बहुत आयत से आशीष पाने सके। और मेरे संग हो पिता, तेरा पवित्र आत्मा का वरदान दे ताकि मैं तेरे सामर्थ के साथ तेरे वचनों को बतला सकूं और तेरा महिमा हो। इस विनती को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुना दया से ग्रहण कर, आमीन। आज का हमारा अध्ययन का शीर्षक है आपके भविष्य के बारे में। डॉक्टर पेट्रिसिया और डेविड मराग्रेज ने अपने पेशे में कई दिलों को टूटते हुए देखा। बाल रोगों के विशेषज्ञ होने के नाते उन्होंने कई बीमार बच्चों का इलाज किया, पर वे इस बात से अचंभित थे कि कई बच्चे तो गंभीर समस्याओं से बाहर निकल आए, जबकि कई अन्य उनके बोझ तले दब कर रह गए। क्यों? आखिर क्यों? उदाहरण के लिए, एक बच्चा ड्रग्स लेता है जबकि दूसरा बच्चा कॉलेज जाता है। आखिर क्यों कुछ शोषित बच्चे बड़े होकर खुद शोषण करने लगते हैं, जबकि अन्य बच्चे अच्छे माँ बाप बनते हैं? मृग जेक दंपति ने इन प्रश्नों के उत्तर खोजने के लिए एक व्यापक सर्वेक्षण किया। उनके अध्ययन में सदमे से उभरने और अपना जीवन स्वस्थ बना लेने वाले सभी बच्चों में एक गुण बार बार उभर कर सामने आया। रहस्य: जीवन के प्रति आशा और विश्वास युक्त सरल दृष्टिकोण। आशा ने सारा अंतर पैदा किया। आशा किसी भी दूसरी चीज की तुलना में हमारे सम्मुख विराल रूप धारण किए खड़ी प्रतिकूल परिस्थितियों को हराने में सबसे ज्यादा मदद करती है। मनुष्यों को आशा की नितांत आवश्यकता है, पर हमें यह कैसे मिलेगी? हमारी दुनिया में आशा मिलना तब तक बहुत मुश्किल है जब तक हम इसे बाइबल की भविष्यवाणी के दृष्टिकोण से नहीं देखते हैं। यह डिस्कवर मार्गदर्शिका एक उल्लेखनीय भविष्यवाणी का विश्लेषण करती है, जिसने न जाने कितने लोगों को आशा की एक तेजस्वी किरण दी है। बाइबल की एक अद्भुत भविष्यवाणी है। यीशु मसीह के जन्म से लगभग 500 वर्ष पहले ही परमेश्वर ने नबी दानियल के जरिए लोगों को भविष्य की एक चमत्कारिक झलक दिखला दी थी। परमेश्वर ने पहले ही दानियल से लेकर हमारे समय तक के 2500 वर्षों के विश्व इतिहास की रूपरेखा प्रकट कर दी थी। यह भविष्यवाणी उस सपने में हुई जो परमेश्वर ने करीब 2500 वर्ष पूर्व बेबलोन के राजा नबूकदनेस्सर को दिखाया था। सपने ने इस राजा को बहुत व्याकुल कर दिया, पर जब वह जागा तो सपने को याद नहीं कर पाया। जब बेबलोन के सभी विद्वान उसे सपना याद दिलाने में या इसकी व्याख्या करने में असफल रहे, दानियल नाम का एक बंदी बनाकर लाया गया यहूदी हाजिर हुआ और दावा करने लगा कि स्वर्गलोक के परमेश्वर सारे रहस्य प्रकट कर सकते हैं। राजा के सामने खड़े होकर दानियल ने निर्भयता के साथ घोषणा की, हे राजा, जब आप देख रहे थे तब एक लंबी चौड़ी मूर्ति दिखी और वह मूर्ति जो आपके सामने खड़ी थी उसकी चमक अनुपम थी और उसका रूप भयंकर था। उस मूर्ति का सिर तो चौके सोने का था, उसकी छाती और भुजाएं चांदी की, उसका पेट और जांघें पीतल की, उसकी टांगें लोहे की और उसके पांव कुछ तो लोहे के और कुछ मिट्टी के थे। फिर देखते देखते तूने क्या देखा कि एक पत्थर ने बिना किसी के खोदे आप ही आप उखड़ कर उस मूर्ति के पांव पर लगकर जो लोहे और मिट्टी के थे उनको चूर चूर कर डाला। तब लोहा, मिट्टी, पीतल, चांदी और सोना भी सब चूर चूर हो गए और धूपकाल में खलिहानों के भूसे की नाई हवा में ऐसे उड़ गए कि उनका कहीं पता ना रहा। और वह पत्थर जो मूर्ति पर लगा था वह बड़ा पहाड़ बनकर सारी पृथ्वी में फैल गया। इसे हम पढ़ते हैं दानियल की पुस्तक उसका 2:31-35 तक में। पहली नजर देखने पर प्रतीत होता है कि आज के समय में आशा पाने से इस मूर्ति का क्या कोई लेना देना है। परंतु थोड़ी प्रतीक्षा कीजिए, भविष्यवाणी की व्याख्या होती है। एक मंत्रमुग्ध हो बैठे नबूकदनेस्सर को बिल्कुल ठीक ठीक बताने के बाद कि उसने अपने सपने में क्या देखा था, भविष्यवक्ता दानियल ने कहा, स्वप्न तो यों ही हुआ और अब हम उसका फल राजा को समझा देते हैं। इसे हम दानियल 2:36 में पढ़ते हैं। सोने का सिर। दानियल ने राजा को सोने के सिर का मतलब किस विश्व शक्ति से संकेत करता है। हे राजा, तू तो महाराजाधिराज है, क्योंकि स्वर्ग के परमेश्वर ने तुझको राज्य सामर्थ शक्ति और महिमा दी है, यह सोने का सिर तू ही है। यह हम आयत 37 और 38 में पढ़ते हैं, दूसरा अध्याय का। दानियल उस दुनिया के महानतम साम्राज्य के शासक से कह रहा था, नबूकदनेस्सर, परमेश्वर तुझे यह बता रहा है कि तेरा साम्राज्य बेबलोन सोने के सिर से दर्शाया गया है, चांदी की छाती और भुजाएं। इंसानी नजरिए से बेबलोन ऐसा साम्राज्य लगता था जो चिरकाल तक बना रहेगा, परंतु भविष्यवाणी क्या कहती है कि आगे क्या हुआ। तेरे बाद एक राज्य और उदय होगा जो तुझसे छोटा होगा, इसे हम आयत 39 में पढ़ते हैं। परमेश्वर की भविष्यवाणी पूर्ण हुई जब नबूकदनेस्सर का साम्राज्य चकनाचूर हो गया, जब फारसी सेनापति साइरस ने बेबलोनिया के साम्राज्य को 539 ईसा पूर्व में उखाड़ फेंका। इसलिए चांदी की छाती और भुजाएं मादी फारस साम्राज्य का प्रतिनिधित्व करती हैं, जो एक अन्य शक्तिशाली साम्राज्य था। पीतल का पेट और जांघें, धातु की उस विशालकाय मूर्ति का यह हिस्सा किसका प्रतीक है, क्या आप जानते हैं? इसे हम आयत 39 में पढ़ते हैं फिर से। फिर एक और तीसरा पीतल का सा राज्य होगा जिसमें सारी पृथ्वी आ जाएगी। पीतल का पेट और जांघे यूनानी साम्राज्य का प्रतीक है। सिकंदर महान ने मादी और फारस को परास्त करके यूनान को विश्व का तीसरा महान साम्राज्य बना दिया। 331 से 168 ईसा पूर्व तक ग्रीस ने राज किया, और इसके बाद लोहे की टांगे। और चौथा राज्य लोहे के तुल्य मजबूत होगा, लोहे से तो सब वस्तुएं चूर चूर हो जाती और पिस जाती हैं, इसलिए जिस भांति लोहे से वे सब कुचली जाती हैं, उसी भांति उस चौथे राज्य से सब कुछ चूर चूर होकर पिस जाएगा। या हम आयत 40 में पाते हैं, दानियल अध्याय 2 का। सिकंदर की मौत के बाद उसके साम्राज्य कमजोर पड़ गया और कई प्रतिद्वंदी धड़ों में बट गया, और आखिरकार 168 ईसा पूर्व पाइडना की लड़ाई में रोम के लौह साम्राज्य ने यूनान को कुचल दिया। करीब 2000 साल पहले जब यीशु का जन्म हुआ, रोमन साम्राज्य पर अगस्तुस कैसर का शासन था, इसे हम लुका 2:1 में पाते हैं। मसीह और उसके भेजे गए लोहे की पैरों द्वारा दर्शाए गए समय में हुए। 8वीं सदी के इतिहासकार गिबन निश्चित ही दानियल की भविष्यवाणी की ओर इशारा कर रहे थे जब उन्होंने लिखा, सोने या चांदी या पीतल की मूर्तियां जो राष्ट्रों और उनके राजाओं का प्रतिनिधित्व कर रही हैं, एक के बाद एक करके रोम के लौह साम्राज्य द्वारा तोड़ दी गईं। एक क्षण के लिए इस भविष्यवाणी पर इंसानी नजरिए से विचार करें। आखिर बेबलोनिया के समय में हुए दानियल को यह कैसे पता था कि भविष्य में सैकड़ों साल बाद कितने साम्राज्य एक के बाद एक आएंगे? हमें तो यह भी नहीं बता सकते कि अगले हफ्ते शेयर बाजार में क्या होने वाला है। तब भी बेबलोन, मादी फारसी, यूनानी और रोमन साम्राज्य एक के बाद एक ठीक वैसे ही आए जैसे भविष्यवाणी की गई थी, आज्ञाकारी स्कूली बच्चों की भांति। क्या परमेश्वर का भविष्य पर नियंत्रण है? क्या हम उसकी महान योजना के आधार पर आशा कर सकते हैं? इसका उत्तर है एक सुकून भरा हाँ। कुम्हार की मिट्टी और लोहे से मिलाकर बने पांव और उंगलियां, क्या रोम के बाद एक पांचवी विश्व शक्ति आएगी? हम पढ़ते हैं दानियल 2:41 और 42 में, और तूने जो मूर्ति के पांव और उनकी उंगलियों को देखा, जो कुछ कुम्हार की मिट्टी की और कुछ लोहे की थी, इससे वह चौथा राज्य बटा हुआ होगा, तो भी उसमें लोहे का सा कड़ापन रहेगा, जैसे कि तूने कुम्हार की मिट्टी के संग लोहा भी मिला हुआ देखा था, और जैसे पांव की उंगलियां कुछ तो लोहे की और कुछ मिट्टी की थी, इसका अर्थ यह है कि वह राज्य कुछ तो दृढ़ और कुछ निर्बल होगा। दानियल ने एक पांचवे विश्व साम्राज्य की नहीं, बल्कि रोम के लौह साम्राज्य के बढ़ जाने की भविष्यवाणी की थी। रोम 10 साम्राज्यों में बढ़ जाएगा, जिसका प्रतिनिधित्व मूर्ति के पांव और उंगलियां करते हैं। क्या वास्तव में ऐसा हुआ? बिल्कुल ऐसा ही हुआ। ईसा काल की तीसरी और चौथी शताब्दी में उत्तर की दिशा से आए बर्बर आक्रमणकारी रोम साम्राज्य पर टूट पड़े और एक के बाद एक इसे करारी शिकस्त देते गए। आखिरकार पश्चिमी रोम का अधिकांश हिस्सा 10 जनजातियों के हिस्से आ गया और यूरोप के सीमाओं के भीतर 10 अलग अलग और स्वतंत्र राष्ट्र स्थापित हुए। अतः पैरों की उंगलियां वर्तमान यूरोप के आधुनिक देशों का प्रतिनिधित्व करती हैं। बाइबल की भविष्यवाणी में हमारा दिन को आइए देखते हैं। क्या दानियल की भविष्यवाणी यह बताती है कि यूरोप के इन राष्ट्रों को एक शासक के अंतर्गत संगठित करने के प्रयास किए जाएंगे? दानियल 2:43 में हम पढ़ते हैं, और तूने जो लोहे को कुम्हार की मिट्टी के संग मिला हुआ देखा। इसका अर्थ यह है कि उस राज्य के लोग एक दूसरे मनुष्यों से मिले जुले तो रहेंगे, परंतु जैसे लोहा मिट्टी के साथ मेल नहीं खाता, वैसे ही वे भी एक ना बने रहेंगे। शक्तिशाली पुरुष कई बार यूरोप का एकीकरण करने का प्रयास कर चुके हैं, परंतु इस लक्ष्य को पूरा न कर पाए हैं। नेपोलियन एक विभाजित यूरोप को एकीकृत करने के सबसे करीब आ गया था, परंतु वाटरलू की युद्ध भूमि से हारकर भागते समय शायद वह इसी भविष्यवाणी के बारे में सोच रहा होगा, जब उसने कहा, सर्वशक्तिमान परमेश्वर को मैं नहीं हराना, मेरे बस की बात नहीं। कैसर विल्हेल्म द्वितीय और एडोल्फ हिटलर ने अपने दिनों में सबसे ताकतवर सेनाएं खड़ी कर दी थी, पर दोनों ही अपने शासन में पूरे यूरोप को संगठित करने में असफल रहे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के शब्द दांव पर लगे थे। लोग एक दूसरे मनुष्य से मिले जुले तो रहेंगे, पर एक ना बने रहेंगे। दो युद्धों का परिणाम यह सिद्ध करता है कि भविष्य की कमान परमेश्वर के हाथों में है। आखिर में उसी का इस पर नियंत्रण है। यह हमें आशा, मन को सुकून और उसकी योजना में हमारे जीवन की हिस्सेदारी की तसल्ली देने को पर्याप्त हैं। आइए हम भविष्य पर एक नजर डालें। दानियल की भविष्यवाणी का केवल एक हिस्सा पूरा होना बाकी है। उस पत्थर का क्या अर्थ है जो मूर्ति के पैर पर चोट करता है, इसे चूर चूर कर देता है और एक विशालकाय पहाड़ बन जाता है जो पूरी पृथ्वी को ढक लेता है। और उन राजाओं के दिनों में स्वर्ग का परमेश्वर एक ऐसा राज्य उदय करेगा जो अनंत काल तक ना टूटेगा और न वह किसी दूसरी जाति के हाथ में किया जाएगा, वरन वह उन सब राज्यों को चूर चूर करेगा और उनका अंत कर डालेगा और वह सदा स्थिर रहेगा। यह हम पढ़ते हैं दानियल 2:44 में। उन राजाओं का तात्पर्य केवल उन्हीं राजाओं से है जिनका प्रतिनिधित्व मूर्ति के पैर व पैर की उंगलियां करती हैं। आधुनिक यूरोप के शासक, जो सीधे हमारे समय की ओर इशारा है, एक पत्थर जो बिना किसी के खोदे उखड़कर मिट्टी को जा लगता है और इसे चूर चूर कर डालता है, फिर पूरी धरती पर फैल जाएगा। आयत 34, 35 और 45। जल्द ही यीशु एक साम्राज्य की स्थापना करने के लिए स्वर्ग से अवतरित होंगे, सुख और शांति का उनका साम्राज्य। फिर मसीह सनातन चट्टान और राजाओं का राजा सदैव के लिए दुनिया पर शासन करेंगे। दानियल 2 की भविष्यवाणी की हर बात सत्य सिद्ध हो गई और अब बस अंतिम काम बचा हुआ है, पत्थर द्वारा मूर्ति को चकनाचूर किया जाना। परमेश्वर की समय सारणी के अनुसार हम अभी एक वैभवशाली शिखर बिंदु की ओर बढ़ रहे हैं, जो है ईसा मसीह का हमारी दुनिया में पुनरागमन। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र मानव इतिहास के लंबे खूनी संघर्ष को समाप्त करने वाला है और प्रेम व दया का अपना चिरकालीन राज्य स्थापित करने वाला है। यह भविष्यवाणी राष्ट्रों के उत्थान और पतन में परमेश्वर के राह दिखलाने वाले हाथों का होना प्रकट करती है। परमेश्वर अतीत जानता है और यह बाइबल भविष्यवाणी स्पष्ट तौर पर दिखलाती है कि वह भविष्य भी जानता है। यदि परमेश्वर राष्ट्रों के उदय और अस्त की राह इतनी सटीकता से बता सकता है, निश्चित ही वह प्रत्येक व्यक्ति के जीवन को मार्गदर्शन दे सकता है। यीशु ने हमें भरोसा दिलाया, तुम्हारे सिर के बाल भी सब गिने हुए हैं, इसलिए डरो नहीं। मत्ती 10:30-31 में हम इसे पढ़ते हैं। परमेश्वर द्वारा दिया गया आस्था का उपहार हमारी सभी परेशानियों और सभी भयों को हराने वाली औषधि बन सकता है। उससे मिलने वाली आस्था हमारे प्राण के लिए लंगर है। इब्रानियों 6:19। एक भरोसेमंद परमेश्वर में आशा रखना सारा अंतर पैदा कर सकता है। चाहे हमें अपने आसपास की पूरी दुनिया टूटती नजर आ रही हो, हमें अकेले अपनी पतवार नहीं चलानी पड़ रही है। एक महान हाथ हमें थाम कर हमें राह दिखा रहा है। यदि आप पूर्ण समर्पण के साथ यीशु के पास आते हैं, वह आपको एक आस्था देगा जो हर तूफान से आपको निकाल लेगी। खोज निकाले वह पारलौकिक शांति जिसका वचन यीशु ने दिया है, यूहन्ना 14:27। शांति मैं तुम्हारे साथ छोड़ता हूँ, अपनी शांति मैं तुम्हें देता हूँ, अपने दिल को परेशान ना होने दे और ना ही डरें। क्या आपके पास वह शांति है? यदि हाँ, तो अपने मुक्तिदाता यीशु का धन्यवाद करें। अगर नहीं है तो क्यों ना उसे आज ही अपने जीवन में बुलाएं। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे महान सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर पिता, हम तेरे पास आते हैं, हम सबों को तू स्वीकार कर और आशीष दे पिता। हमारे दिलों को तेरे शांति से भर दे और यीशु मसीह के राह में चला पिता। हमें विश्वास में दृढ़ बना, हमारे पापों को हमसे दूर कर और हमें तेरे रास्ता में चलने के लिए सामर्थ और शक्ति दे पिता। हम सबों को तेरा पवित्र आत्मा का आशीष दे। इस विनती को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन दया से ग्रहण कर, आमीन।
इसके साथ ही हम लगभग अपने प्रसारण के समाप्ति पर आ गए हैं। परमेश्वर के वचन को अधिक जानने के लिए आप हमेशा हमें 1-800-833-2231 पर संपर्क करें या हमें bible@awr.org पर ईमेल करें।
हमारा डाक पता है AWR Adventist World Radio, पोस्ट बॉक्स 1446, पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल भी कर सकते हैं hindirsamc@sudaventist.org।
मैं हूँ गौरव चौहान
और मैं हूँ सारा मंडोरा। AWR की ओर से विदा लेते हैं।
अपने परिवार और दोस्तों के साथ फिर से हमसे जुड़ें।
तब तक हम आपको अलविदा और ईश्वर के आशीर्वाद की कामना करते हैं।